नमस्कार, आज हम साइबर धोखाधड़ी के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। खासकर डिजिटल अरेस्ट, इसके बारे में काफी सुनने में आ रहा है।
जी हाँ,
हमारे पास एक साइबर एक्सपर्ट के इंटरव्यू का यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट है, तो कोशिश यही है कि समझें कि ये स्कैमर्स आखिर करते कैसे हैं ये सब, और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। मतलब ये बात हैरान करती है कि कैसे दूर दराज से ये लोग पूरा रैकेट चलाते हैं और लोगों को दिमागी तौर पे फंसा लेते हैं।
हाँ बिल्कुल,
तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। मतलब ये अपराधी बहुत शातिर हैं, वो नकली पहचान इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिम कार्ड किसी और के नाम पे होगा, शायद किसी किसान के नाम पर किसी दूसरे राज्य में।
अच्छा,
बैंक खाता किसी और के नाम पर। तो इनको पकड़ना इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं, कभी मथुरा, कभी भरतपुर, कभी मेवात, गुड़गांव, बदलते रहते हैं।
हाँ, और ये सिर्फ जामताड़ा वाली बात नहीं रही। अब स्रोत में तो ये भी था कि करीब 40 ऐसे हॉटस्पॉट बन गए हैं।
जी बिल्कुल, 40 से भी ज्यादा।
और ये गांव में कैंप लगाते हैं, मतलब लोगों के आधार और अंगूठे के निशान उनका गलत इस्तेमाल करके।
हाँ बिल्कुल, उनके नाम पर सिम कार्ड, बैंक खाते, ये सब खुलवा लेते हैं
और फिर
ये जानकारी दूसरों को बेच देते हैं।
हाँ, पूरी किट बनाकर
एक पैकेज तैयार करते हैं और दूसरे अपराधियों को बेच देते हैं, फिर वो उसका इस्तेमाल करते हैं धोखाधड़ी के लिए।
बाप रे, ये तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है।
और इसमें एक और चिंता की बात यह है कि जो पैसा ये लोग निकालते हैं ना, वो कुछ ही घंटों में या ज्यादा से ज्यादा एक दिन में देश से बाहर भेज दिया जाता है।
ओ, मतलब अगर तुरंत एक्शन न लिया जाए तो पैसा वापस मिलना लगभग नामुमकिन है।
समझिए, जब तक पुलिस जांच करती है, बैंक तक पहुंचती है, खाता खाली मिलता है ज्यादातर।
अब आते हैं इस डिजिटल अरेस्ट पर। ये सुनने में ही बहुत डरावना लगता है, ये होता क्या है असल में?
IVR कॉल से होती है, मतलब कंप्यूटर वाली आवाज में कॉल आएगी।
जैसे?
जैसे कि आपका कोई कुरियर आया है या कोई पार्सल है जो फंसा हुआ है, फिर वो कहेंगे कि ज्यादा जानकारी के लिए 9 दबाएं।
अच्छा, लोग दबा देते होंगे?
हाँ, जैसे ही आप 9 दबाते हैं, कॉल किसी नकली कस्टमर केयर वाले को या फिर वो आगे किसी नकली पुलिस ऑफिसर या क्राइम ब्रांच वाले को ट्रांसफर कर देते हैं।
नकली पुलिस ऑफिसर?
जी, फिर वो आपको डराते हैं, कहते हैं आपके नाम पर कोई FIR हुई है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, गिरफ्तारी वारंट का जिक्र करते हैं।
मतलब पूरा माहौल बनाते हैं डर का।
बिल्कुल, यहीं से वो दिमागी खेल शुरू होता है, डर और अथॉरिटी का दिखावा। इससे पीड़ित घबरा जाता है, सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। फिर उसे एक ऑप्शन देते हैं, डिजिटल अरेस्ट।
डिजिटल अरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब वो कहते हैं कि अगर आप जांच में सहयोग करेंगे तो हम आपको सचमुच गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप डिजिटली अरेस्टेड रहेंगे।
और डर के मारे लोग मान जाते होंगे?
हाँ बिल्कुल, फिर उनसे कहा जाता है कि आपको घर पे ही रहना है, कहीं जाना नहीं है।
घर पर ही?
हाँ, और एक नया फोन खरीदना है, उसमें स्काइप इंस्टॉल करना है और उस पर लगातार वीडियो कॉल पर कैमरे के सामने रहना है।
क्या, पूरे दिन कैमरे के सामने?
जी, और किसी को भी इस बारे में बताना नहीं है, अगर बताया तो तुरंत असली गिरफ्तारी होगी, ऐसी धमकी देते हैं।
मतलब एक तरह से घर में ही बंदी बना लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, लोग कई कई दिन ऐसे रहते हैं।
हाँ, कई दिनों तक पूरी तरह अपराधी के कंट्रोल में।
और फिर आखिर में क्या होता है?
आखिर में उनसे कहा जाता है कि देखिए, आपके बैंक खाते में जो पैसा है ना, वो शायद अवैध गतिविधियों से जुड़ा है, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे एक सरकारी या RBI के सुरक्षित खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। और वो खाता असल में उन्हीं अपराधियों का होता है।
और लोग कर देते हैं ट्रांसफर,
डर और भरोसे के गालमेल में फंसा कर करवा लेते हैं।
लेकिन अपराधी ये भरोसा कैसे जीत लेते हैं शुरू में? क्या इसमें हमारी कोई गलती होती है?
देखिए, सीधी गलती शायद पीड़ित की ना हो, अक्सर क्या होता है कि पहले कोई डेटा ब्रीच हुआ होता है।
डेटा ब्रीच मतलब हमारी जानकारी कहीं से लीक हुई।
हाँ, जैसे आपकी कोई पुरानी बीमा पॉलिसी की डिटेल या कोई और पर्सनल जानकारी, अपराधी उसी लीक हुई जानकारी का इस्तेमाल करते हैं।
जब वो आपके बारे में कुछ ऐसी बात बताते हैं जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि हाँ, ये सचमुच किसी अथॉरिटी से ही होगा।
अच्छा,
तो वो हमारी ही जानकारी इस्तेमाल करके हमें फंसाते हैं।
बिल्कुल, तो असल में गलती उस संस्था की भी है जहां से वो डेटा लीक हुआ।
ये जिम्मेदारी वाली बात बहुत अहम है। स्रोत में UK के एक कानून का भी जिक्र था शायद।
हाँ, एक दिलचस्प कानून आया वहां कि अगर धोखाधड़ी होती है और चाहे उसमें ग्राहक की गलती लगे भी, बैंक को शायद 5 दिन के अंदर पूरा पैसा लौटाना होगा।
ओ, यानी जिम्मेदारी बैंक पर डाल दी गई है वहां।
जी, ये एक अहम कदम है, भारत में भी ऐसी जवाबदेही पर सोचने की जरूरत है।
बिल्कुल, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फौरन क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तुरंत 1930 पर कॉल करें, ये गृह मंत्रालय की नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है।
1930, ठीक है? और
फिर cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, ये भी बहुत जरूरी है।
ऑनलाइन शिकायत cybercrime.gov.in पर।
और एक और चीज जो RBI की गाइडलाइन भी कहती है, 3 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक को लिखित में जरूर सूचित करें, ईमेल से या ब्रांच जाकर।
अच्छा, लिखित में बैंक को बताना है 3 दिन के अंदर, ये जरूरी है।
बहुत जरूरी है। अब बात आती है बचाव की, कैसे बचें इन सबसे?
हाँ, ये सबसे अहम सवाल है।
सबसे अच्छा तरीका है जीरो ट्रस्ट मॉडल अपनाना।
जीरो ट्रस्ट, इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब है किसी पे भी आग बंद करके भरोसा मत कीजिए ऑनलाइन दुनिया में। मानकर चलिए कि कोई भी अनजान कॉल या मैसेज वो संदिग्ध हो सकता है, जब तक कि आप पूरी तरह पक्का न कर लें।
शक करना जरूरी है।
बिल्कुल। और अगर कभी लगे कि कॉल स्पूफ है, मतलब जैसे आपकी किसी जानने वाले के नंबर से आ रही है पर आवाज या बात कुछ अजीब लगे।
हाँ, ऐसा होता है कभी कभी,
तो कॉल काट दीजिए और खुद उस नंबर पर वापस कॉल मिलाइए। अगर स्पूफ कॉल होगी तो वापस नहीं लगेगी।
अच्छा, ये बढ़िया तरीका है जांचने का।
और एक बहुत बहुत जरूरी चीज, व्हाट्सएप पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA कहते हैं, वो जरूर एक्टिवेट करें।
हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, ये कैसे करते हैं?
व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, फिर अकाउंट में, वहाँ 2-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसे ऑन करके 6 डिजिट का एक पिन सेट करना होता है और एक ईमेल आईडी डालनी होती है।
ठीक है, ये तो कर लेना चाहिए सबको। स्रोत में किसी मोबीआर्मर ऐप का भी जिक्र था।
हाँ, कुछ ऐप्स हैं जो मदद कर सकते हैं, जैसे ये ऐप QR कोड स्कैन करने में या किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे जांचने में या फोन में ऐप्स की परमिशन चेक करने में मदद कर सकता है।
तो मतलब कई लेयर की सुरक्षा रखनी पड़ेगी।
बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि साइबर अपराधी बहुत चालाक हो गए हैं, तरीके बदल रहे हैं, और ये डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें दिखाती हैं कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कितने माहिर हैं।
सही कहा, किसी भी कॉल या मैसेज पर, खासकर अगर वो बहुत आधिकारिक लगे, तो भी शक करना और सतर्क रहना ही सबसे अच्छा बचाव है।
जी, और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
हाँ, जरूर।
कि हम अपनी इस डिजिटल दुनिया में जाने अनजाने कितना सारा पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एप्स को परमिशन देते हुए। स्रोत में फेसबुक का उदाहरण था कि वो कितनी तरह की जानकारी लेता है, एड्रेस, धर्म, राजनीतिक विचार, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि हेल्थ रिकॉर्ड का एक्सेस भी मांग सकता है।
हाँ, ये तो हम ध्यान भी नहीं देते कई बार।
तो क्या हमें वाकई अंदाजा नहीं है कि ये सारा डेटा कैसे जमा हो रहा है और भविष्य में इसका किस तरह गलत इस्तेमाल हो सकता है, शायद ऐसे तरीकों से जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है।
हम ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचना तो बनता है।